ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। और ऐसा सुख हम चाहते हैं जिस सुख में कमी ना हो, न्यूनता ना हो, और वो सुख और बढ़े। शांत होना चाहते हैं, शांति में कमी ना हो, शांति और बढ़े। तृप्त होना चाहते हैं, तृप्ति में कमी ना आए, तृप्ति और बढ़े। प्रसन्न रहना चाहते हैं, प्रसन्नता कम ना हो, प्रसन्नता और बढ़े। संतुष्ट रहना चाहते हैं, संतोष बना रहे, संतोष में कमी ना आए लेकिन संतोष और बढ़े। भय, डर, फियर ना हो, उसमें कमी ना हो, हम निडर रहे, निडरता में, निर्भयता में कमी ना आए लेकिन और बढ़े। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी को रोकना टोकना पसंद नहीं आता, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता जैसी है वैसी रहे, उसमें कमी ना आए लेकिन और स्वतंत्रता बढ़े। ये हर मनुष्य जानता है, ऐसा चाहता है, ये अपेक्षा एक्सपेक्टेशन हर मनुष्य रखता है। लेकिन कैसे, हाउ, कैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि आपने विषय भी मेरे को ऐसा ही दिया है कि हम अधिक से अधिक सुखी कैसे रहें, अधिक से अधिक संतुष्ट कैसे रहे, तृप्त कैसे रहें, निर्भीक, निडर, निर्भय से युक्त कैसे रहें। आप देखेंगे कभी प्रवचनों में, विशेषकर जैसे हम जैसे साधु या लाल पीले कपड़े वाले या प्रवक्ता लोग, आचार्य लोग अक्सर ये बोला करते हैं, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, स्पेशली इंटरनली अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब नहीं होना चाहिए, अक्सर बोलते हैं। और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि ये सब आदमी को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, क्लेशित करते हैं और जीवन शैली को अस्त व्यस्त कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इस बात को सभी जानते हैं और बोलते भी रहते हैं। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया, तो ये बातें तो सब बोलते हैं लेकिन हाउ, कैसे इनको, कैसे हम दूर करें। होना नहीं चाहिए ये दोष, सभी बोलते हैं लेकिन इनको दूर कैसे करें, दूर करने के उपाय क्या है। इन शत्रुओं को, इन दोषों को, इन माइनस पॉइंट्स को, ये नेगेटिविटी है सारी, इन्हीं को योग में दूसरे वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में बोला है। जैसे हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जो बोलते हैं, इन्हीं शब्दों को दूसरे शब्दों में, पांच शब्दों में बोल दिया। वो कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन्हीं पांचों को महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने योग में स्पष्ट किया, और महर्षि वेदव्यास ने तो इनको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किया है। और इन्हीं को हम लोग हिंदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ऐसा बोलते हैं। पर ये हमारे लाइफ में ना रहे तभी हम अपने जीवन में अधिक से अधिक सुखी रह सकते हैं, अधिक से अधिक संतुष्ट रह सकते हैं, अधिक से अधिक खुश रह सकते हैं, अधिक से अधिक प्रसन्न रह सकते हैं, अधिक से अधिक निर्भीक, निडर, निर्भयता से युक्त हो सकते हैं और अधिक से अधिक स्वतंत्र हो सकते हैं। पर प्रश्न तो वही है कि ये दूर कैसे हों, क्या ऐसे उपाय लगाएं, अपनाएं जिसके थ्रू हम इनको अपने लाइफ में ना रख सके और हम अधिक से अधिक सुखी हो सके, क्या उपाय है। तो हमें कोई नए उपायों को क्रिएट नहीं करना है क्योंकि ऋषियों ने ऑलरेडी पहले से बता रखा है, बस केवल हमें फॉलो करना है, उनको सुनना है, समझना है, इंफॉर्मेशन गेन करना है और उसका यूज करना है। प्रॉब्लम ये है हमारे लाइफ के अंदर, हमारे पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं होती है। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे, ये दिमाग नहीं है, ये गूगल हो गया आज व्यक्ति का, मतलब इतना इंफॉर्मेशन गेन कर रखा है, पर उस इंफॉर्मेशन का रखना होना कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है जब उसका यूज हम नहीं करते हैं। तो जब वो यूज करने लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इन शत्रुओं को दूर करने का उपाय क्या है, ये ऋषियों ने बता रखा है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पहला है काम। काम का अर्थ होता है डिजायर, इच्छा, और एक इच्छा होता है राइट वे में, जहां नीड जैसी इच्छा होनी चाहिए वैसी इच्छा हमारे में है तो अच्छी बातें होनी चाहिए। आपको पता है कि आप लोग भी बोलते होंगे, सुनते भी होंगे, चार प्रयोजन होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सुना है ना आपने, और उसमें चार प्रयोजनों में एक काम है। काम को देखने की एक नजरिया, एक दृष्टि, एक एटीट्यूड है। तो ये जो हमारी इच्छा है, डिजायर तो सभी के अंदर है, सभी के जीवन में, इसको दूर नहीं कर सकते, ये तो आत्मा का नेचर है, स्वभाव है। पर डिजायर भी दो प्रकार की होता है, इच्छा भी दो प्रकार की है, एक तो आर्टिफिशियल है जो क्रिएट करती हम लोग, और एक नेचुरल आत्मा का नेचर है, उसके अंदर है। जैसे मेरे को दुख नहीं चाहिए जी, मतलब आपको क्या सुख, आपको दुख चाहिए क्या, आपको भी दुख नहीं चाहिए। तो जो मेरी इच्छा है, दुख नहीं चाहिए, किसी भी टाइप का दुख हो, कोई भी पेन हो, मेरे को नहीं चाहिए, सेम टू सेम आपको भी नहीं चाहिए। ये जो इच्छा है ये सबके एक बराबर है, एक जैसी इच्छा है, ये नेचुरल है, ये आत्मा का नेचर है, ये सब में सेम टू सेम मिलेगा आपको। आपको दुख नहीं चाहिए, मेरे को दुख नहीं चाहिए, इवन मेरे को आपको नहीं, कुत्ते, गधे, घोड़े, सुअर को भी नहीं चाहिए, किसी को, जिसको आप लिविंग थिंग कहते हो, किसी को नहीं चाहिए। ये जो इच्छा है सबके अंदर एक जैसा है, सेम टू सेम है, लेकिन आपको BMW चाहिए, ये इच्छा है, मेरे को नहीं चाहिए। किसी को मर्सिडीज चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को ही चाहिए, किसी को ही चाहिए। ये अलग अलग डिफरेंट इच्छाएं, जो डिजायर्स हैं, ये हम क्रिएट करते हैं, ये नेचुरल आत्मा का नेचर नहीं है, स्वभाव नहीं है। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को काम कहते हैं। जब काम पैदा होता है हमारे दिमाग में, मन में, और वो आदमी को परेशान कर देता है, जब उसकी पूर्ति आप नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा की पूर्ति तीन काल में कभी आज तक किसी ने नहीं किया, वो इच्छा जो हम क्रिएट करते हैं, नेचुरल इच्छा है, उसको तो हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो सब में सेम होती है और उसको सब लोग पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो हम क्रिएट करते हैं ना अलग अलग इच्छाएं दुनिया में, इन इच्छाओं के होने पर जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो लाइफ में दुख होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं हम लोग उन इच्छाओं की पूरी करने के लिए, मां से, पिता से, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, उससे, इससे, जो भी हमारे रिलेशन में आते हैं, सबसे हम ऐसी अपेक्षाएं, ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, आदमी शैतान बन जाता है, इंटरनली, स्पेशली मेंटली, कभी कभी वर्बली और कभी कभी फिजिकली भी हो जाता है, वायलेंट हो जाता है आदमी, जब उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती जिसको हमने क्रिएट किया है। ऐसी इच्छा को यहां बोलते काम। और ऐसे काम को कैसे कंट्रोल करें, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, इसका उपाय क्या है? तो मेरे को कोई नया क्रिएट करना नहीं है उपाय, ऋषियों ने बताया। आपने एक ऋषि का नाम सुना होगा, उनका नाम है महर्षि गौतम, सुना है ना? महर्षि गौतम ऋषि एक ऐसे हुए हैं जिन्होंने लॉ बनाया, जिसका नाम है न्याय दर्शन। क्या बनाया, जबरदस्त। और उसके अंदर एक छोटा सा सूत्र उन्होंने बनाया, जब ऐसी इच्छा पैदा होती है व्यक्ति के अंदर जो राइट वे में नहीं होती है, जिसको वो कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि उस अपेक्षा, उस एक्सपेक्टेशन को, क्योंकि हर एक्सपेक्टेशन को आप पूरा नहीं कर सकते, तो ऐसी गलत, रॉन्ग वे में जब काम पैदा होता है, उसको कैसे रोक सकते हैं और कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए एक वस्तु होती है, इसको हम लोग हिंदी में कहते इकाई, एक चीज को इकाई कहते हैं, जिसको हम एकत्व कहते हैं। एक जिसको भी आप एक के रूप में देखेंगे, जिस किसी भी, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, जिसको इकाई के रूप में एक रूप में देखें आप। मैं आपके सामने कुछ फ्रूट्स रखता हूं, स्ट्रॉबेरी, ठीक है जी ना, प्लम, पियर, ग्रेप्स, जो भी एक एक के रूप में, मेरी बात देखना, इधर मेरी ओर देखेगा। जब वो इकाई के रूप में उसको अच्छे ढंग से अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक ला करके बढ़िया धो करके आपके सामने रख दिया जाए, एक एक के रूप में, अट्रैक्शन हुए बिना नहीं रह सकता। जिसको भूख लग रही हो, हाँ पेट में चूहे दौड़ रहे हो, मेरी बात समझ रहे ना, और कुछ खाने का ना हो, मेरी बात समझ रहे हैं, आपके सामने वो फ्रूट एक एक इकाई के रूप में आपके सामने रखा जाए, तो ये जो इच्छा आपके मन में पैदा होगी, ये जो उसके प्रति अट्रैक्शन होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। और जब उसकी पूर्ति नहीं होती, आदमी शैतान बन जाता है और वायलेंट हो जाता है, मेंटली भी, वर्बली भी और फिजिकली भी। ऐसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इश्यूज पे है। तो जब किसी एक वस्तु को आप इकाई के रूप में देखते हो, तो वो महर्षि गौतम कहते तन निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। आचार्य जी को अच्छी तरह पता होगा, समझ गए होंगे, अवयवी और अवयव। अवयवी कहते एक को, इकाई को, और अवयव कहते पार्ट्स को, क्योंकि उसको हम इसलिए उसको देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, वो इकाई के रूप में, एक के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई भी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग। अब आप मेंटली अगर आप उसको ऐसा कर लीजिएगा, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा दिख रहा है ना, उसको ऐसे कर दो, इसको हम लोग कहते कचुंबर कर दो उसको, ठीक है जी, अट्रैक्शन समाप्त, इच्छा समाप्त हो जाएगी। रॉन्ग वे में जहां जहां काम पैदा होता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, राइट वे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रॉन्ग वे में जहां जहां इच्छा पैदा होती है और उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते, जिस किसी भी फील्ड में हो, कोई भी इशू हो, और तब आप उसको अवयवी के रूप में देखोगे, तो आप अपनी इच्छा को, अपने काम को रोक नहीं सकते। आप इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे भी आप पागल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, अपने दिमाग को खराब कर सकते हैं, अपने कर्मों को खराब कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को खराब कर सकते हैं, अपने नॉलेज के लेवल को, स्टैंडर्ड को लो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है। आप परेशान हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, और उसमें अट्रैक्शन हो रहा है, और वो आप अट्रैक्शन को रोक नहीं पा रहे हो, क्योंकि माइंड पर इतना कंट्रोल नहीं होता, सेंसेस पर इतना कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि उसको इकाई के रूप में देख रहे हो। तो महर्षि गौतम कहते हैं तन निमित्तम तु, उसका कारण तो ये है अवयवी, इकाई के रूप में मानना, उसको अवयवों के रूप में बदल दो, तो आपका अट्रैक्शन समाप्त। मेरी बात समझ रहे ना, एक मोबाइल है, फोन है, आईफोन 10 और जो भी आजकल लेटेस्ट आया होगा ना, तो बिल्कुल बढ़िया आपके सामने रख दिया जाए, और आपके पास आईफोन 7 है, आप थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, और आपको मिल रहा है, आपको कोई डॉलर नहीं देना है, मिल रहा है आपके सामने रखा, जिसको जो चाहे लेते जाना, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, लेने के लिए आतुर होंगे, और उसको ऐसे कर दिया, मतलब उस पर कुछ हथौड़ा लेकर के टक 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 उसके स्क्रीन को डैमेज कर दूं, फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे आप लोग, क्यों, क्योंकि अब इकाई के रूप में नहीं है, उसके स्क्रीन टूट गया, उसके कई खंड खंड हो गए, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। इकाई के रूप में जिस जिस वस्तु को आप देखोगे, अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकते हो, और उसी इकाई को टुकड़े कर दो, तो आपका अट्रैक्शन समाप्त। रॉन्ग वे में जब कभी भी काम पैदा होता है, तो देख लेना उसको एक है, तो उसको टुकड़े कर लो आप, या तो मेंटली कर लो या फिजिकली कर लो, जो आपकी इच्छा है। जहां आप फिजिकली कर सकते हो फिजिकली कर लो, और जहां नहीं कर सकते तो मेंटली कर लो, तो भी अट्रैक्शन समाप्त। और वहां तो उदाहरण तो ये दिया है, और नेचुरल है, स्त्री पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होती है, पुरुष स्त्री के प्रति अट्रैक्ट होता है, ये नेचुरल स्वभाव है। और रॉन्ग वे में जब अट्रैक्शन पैदा जब कभी होता है, जब एटीट्यूड खराब होता है, तब आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इसको भी काम कहते हैं, इसको भी कंट्रोल ऐसे ही करना होता है। उसको चेहरे को, उसके फेस को मेंटली ऐसा कर दो, ऐसे ऐसे निकल रहा है नाक, नाक में से ऐसे निकल रहा है, आंखों से ऐसे निकल रहा है, ऐसे समझ लो, आप इमेजिन कर लो ऐसे कि जैसे सुबह उठने से ऐसे बाल हो गए भूतनी की तरह, ठीक है ना, और ऐसा कुछ हो गया, फिर ऐसा क्रिएट करके देखो, अट्रैक्शन समाप्त। मेरी बात समझ रहे ना? ये दोनों के लिए है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। ये जब भी रॉन्ग वे में जब काम पैदा होता है, इच्छा पैदा होती है, तब आप उसको एक इकाई के रूप में नहीं देखना, उसको अवयवों के रूप में देखना, उसको पार्ट्स के रूप में देखना, उसको टुकड़ों के रूप में देखना, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे पहनने के कपड़े हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मकान हो, चाहे कोई भी एनीथिंग, लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, जिसमें भी रॉन्ग वे में अट्रैक्शन पैदा होता है, रॉन्ग वे में काम पैदा होता है, तो उसको आप अवयवों के रूप में, पार्ट्स के रूप में देखना स्टार्ट करो। धीरे 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 आपका अट्रैक्शन कम होता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा देर इज नो अट्रैक्शन, फिर काम नहीं रहेगा। तो काम पर कंट्रोल ऐसा हो सकता है, ऐसा महर्षि गौतम कहते हैं। क्लियर? अब अगला है क्रोध, गुस्सा। वाह कमाल है, किसको नहीं आती गुस्सा बताइए, किसको नहीं आता? सबको आती है, और सब जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि जो जानता है वो करता है गुस्सा, और जब सामने वाला करता है उसको उपदेश करता है, और ऐसा उपदेश करता है तो मानो कि ये महर्षि होंगे कोई, ठीक है ना, चाहे वो पति भी हो, चाहे वो पत्नी भी हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन रोकने का प्रयास जो होना चाहिए, जहां सिचुएशन आता है वहां ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या है? वो इंफॉर्मेशन है ना, बहुत है, गुस्सा नहीं करने के बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे आपके पास में, लेकिन यूज कौन करेगा? ये तो हमारे इंडियन मेंटेलिटी हो गया ना, हमें जमा करना आता है, हमको यूज करना नहीं आता है। जैसे डॉलर्स को हम लोग इंडिया में कहते हैं 99 के चक्कर में रहता आदमी, मतलब आज और डॉलर हो गए तो अब 2000 डॉलर के चक्कर में, 1 लाख हो गए तो 2 लाख, ऐसे एक इसको कहते हम 99 के चक्कर में, बस 99 है ना, अब थोड़ा 100 होना चाहिए, फिर 100 हो गए तो 100 101 102 103 करते 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 फिर वो 199 हो गया, अब बस एक कसर बाकी है, 200 होना है, 200 हो गया फिर 101 203 ऐसे करते जाता 299 तक पहुंचता है, फिर वो फिर उसको ऐसा हमारा जोड़ने का हमारा स्वभाव बना हुआ है, यूज करने का स्वभाव नहीं बना है। इसलिए इंफॉर्मेशन का भी हमें जानकारियां बहुत है, लेकिन हमें इकट्ठा करना आता, यूज करना नहीं आता, जहां जे सिचुएशन आता है। अब मान लीजिए दो लोग हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो गुरु शिष्य हो, चाहे कोई भी, दो होने चाहिए, दो के बीच में, क्योंकि गुस्सा तो चाहे दो के बीच में हो, चाहे तीन के बीच में हो, चाहे 50 के बीच में हो, गुस्सा कब आता है हमको, उसका रीजन क्या है? या तो सामने वाला मेरे मुताबिक, मेरे अकॉर्डिंग नहीं करता, अथवा जो गलत करता है, अथवा जो कुछ भी है आपको गलत लगता है, चाहे उसकी उसके विचार, उसका एटीट्यूड, उसका कॉन्सेप्ट, जो भी आपको गलत लगते हैं, या जो आपके अकॉर्डिंग नहीं लगता, या आपने कहा नहीं किया, पति ने कहा पत्नी ने नहीं किया, पत्नी ने कहा पति ने नहीं किया, बेटे ने कहा पिता ने नहीं किया, गुरु ने कहा शिष्य ने नहीं किया, शिष्य ने कहा गुरु ने नहीं किया, सबके साथ लगा लीजिएगा, जब हमारी बात सामने वाले हमारे अकॉर्डिंग नहीं करते, नहीं मानते, तब हमको गुस्सा आता है, ऐसा ही है ना? अच्छा, जिस विषय में हम गलती नहीं करते, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जिस विषय में हम, जिस इश्यू में हम कभी गलती नहीं करते, कोई ऐसा इश्यू हो हम उसमें नहीं करते, स्वप्न में भी नहीं करते, और उस विषय में हमारे सामने वाला, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बेटा हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो, वो करते हैं, और हम नहीं करते उस विषय में, तो हमको स्वाभाविक है गुस्सा तो आएगा, क्योंकि हम तो गलती नहीं करते उस विषय में, हम तो उस विषय में अलर्ट हैं, पर वो करते हैं सामने वाले जो कोई भी है। तो हमें क्या समझना है, ठीक है इस इशू में तो मैं गलती नहीं करता, वो कर रहा है इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको भी तो गुस्सा आएगा ना। कब आएगा? जब किसी और विषय में, किसी और इशू में मैं गलती करता हूं। क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं होना कि हर इशू में, हर विषय में, हर एंगल से मैं हमेशा परफेक्ट हूं, मैं सही हूं, मेरे में कोई दोष नहीं है, गलती नहीं करता। हर आदमी में कोई ना कोई गलती माइनस पॉइंट होता ही है। तो फिर जिस विषय में जब मैं गलती करूंगा तो सामने वाले को भी गुस्सा आएगा, आएगा नहीं आएगा बोलिए आप, आएगा, क्योंकि वो सामने वाला नहीं करता उस इशू में, पर मैं करता हूं। तो जिस इशू में वो नहीं करता वो मैं गलती करता हूं, जिस इशू में मैं नहीं करता वो गलती, तो यहां हुआ क्या है, दोनों गलत हैं। अलग अलग इश्यूज में दोनों गलत है ना, दोनों में कमियां हैं। जब दोनों सेम टू सेम है तो काय को गुस्सा करना है आपको? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जब आप भी गलत हो, अलग बात है, आप अलग विषय में गलत हो, मैं भी गलत हूं, मैं एक अलग विषय में गलत हूं, तो दोनों गलत हैं, तो मैं किस बात पर गुस्सा करूं आपके ऊपर? अगर ये सोच लाएंगे तो वहां क्या करेंगे हम लोग? हमसे तो अच्छे ही नेता लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, बहुत लड़ते फिर मिलके रहते हैं, इलेक्शन आते हैं तो खूब एक दूसरे से लड़ते हैं, और इलेक्शन होने के बाद फिर मिल जाते हैं, मिलने के थोड़ी देर फिर अलग हो जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं पता है? अग्रीमेंट्स करते हैं, दोनों अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई अग्रीमेंट करके फिर मिल जाते हैं, यू नो, आपको पता है सब। तो हम लोग भी तो आदमी है ना, तो हम लोगों को भी अग्रीमेंट करना है। क्या अग्रीमेंट करना है? भाई तू जैसा है ठीक है, मैं जैसा है ठीक हूं, मैं अपने को सुधार नहीं पा रहा हूं, आप अपने को सुधार नहीं पा रहे, तो दोनों अग्रीमेंट कर लो, तो गुस्सा काय को करना है फिर? मिलके रहो ना, कुछ समझ में आ रहा है आपको? भाई जब आप भी गलत मैं भी गलत, दोनों ही दूध के धुले हुए नहीं है, फिर काय को झगड़े करें, क्यों गुस्सा करें एक दूसरे से? अगर जब तक ऐसा एटीट्यूड नहीं लाएंगे तब तक आप गुस्सा कर सकते हैं, आप छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। फिर आप लोगों में से कोई कहेंगे जी ये तो गलत कर रहे, तो रोकेंगे तो फिर ये तो गलत करता ही रहेगा। किसने कहा कि रोकना नहीं, रोको ना, पर गुस्सा करके क्यों रोको? नहीं, जब तक गुस्सा नहीं करूंगा तो ये करता नहीं। रोक जो हमारे नीचे होते हैं ना, बॉस होता है और माता पिता होते हैं, जो ऐसे बड़े लोग होते हैं ना, वो कहते हैं बच्चे लोग गुस्सा करेंगे तो नहीं मानेंगे। अरे ये सीरियल, ये पिक्चर्स, ये क्यों देखते हो आप लोग? नाटक, नाटकों से क्यों नहीं सीखते? नाटकों में मतलब इनको हम लोग, क्योंकि नाटक ही तो है, पहले तो स्टेज पर करते थे, आज स्क्रीन पे करते, इतना ही अंतर है ना, है तो नाटक। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? तो वो लोग वास्तव में जब दिखाते हैं ना उसमें गुस्सा करते हैं, रियल में करते हैं क्या? बोलो, गुस्सा करते हैं नहीं करते हैं ना? क्या करते हैं? नाटक करते हैं, गुस्से का नाटक करते हैं। तो आप भी ऐसे करो ना, आप भी ऐसे करो ना। नाटक करने में वैसे आदमी बहुत एक्सपर्ट होता है, और याद रखना मेरी बात को, दुनिया में नाटक से जितना हम प्रभावित होते हैं उतना प्रभावित दुनिया में और किसी से नहीं होते। सारी दुनिया नाटकों से चल रही है। तो आपको भी अगर करना है, आपको पता होना चाहिए, आप लोग जब यज्ञ करते, हवन करते, उसमें बोलते हैं ना, ओम मन्युरसी मन्युम मई धेई, बोलते नहीं बोलते? मन्यु का मतलब क्या होता है? यही होता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये क्या है? ये मन्यु है, कंट्रोल में होकर के अगर मैं ऐसा किसी को बोलूं, बोल सकता हूं, और ये अलग बात है आप उसको गुस्सा मान ले। अगर कोई आदमी कंट्रोल होकर के आपको, परमात्मा बहुत मन्यु करता, याद रखना, उसका एक नाम भी भयंकर है, याद रखना। हां, पर वो गुस्सा नहीं करता, गुस्सा इट मींस मिथ्या ज्ञान, हां याद रखना। द्वेष जो है, गुस्सा जिसको कहते हैं, जिसको आप लोग कह सकते हैं मूर्खता, मूर्खता में गुस्सा होती है, सज्जनता में गुस्सा नहीं होती है, पर भगवान में कोई मूर्खता नहीं है, लेकिन बहुत मन्यु करता है, इसलिए तो हम बोलते हैं ओम मन्युरसी मन्युम मई धेई। ईश्वर मन्यु स्वरूप है, हमें भी मन्यु स्वरूप बनना है, पर कैसे? कंट्रोल में रह करके, अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, अपने सेंसेस को, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रख करके फिर बोल आय ऐसा बोलने का है आपको। अगर ऐसा बोलना पड़े को, समझ रहे हैं आप लोग, तो इसको कहते हैं नाटक। यानी सामने वाले को नहीं पता होना चाहिए, हाँ आपको पता होना चाहिए आप नाटक कर रहे हैं। रियल में आप अंदर से गुस्सा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को पता होना चाहिए ये गुस्सा कर रहे तो काम करना चाहिए। अगर ऐसा हो, अगर बिना गुस्सा के ही काम चल सकता हो समझाने पर, देखो जी न्याय दर्शन की बात मैंने आपके सामने रखी है, वैसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमको डील करना आता हो। हाउ टू डील इट, किसके साथ कैसे डील करना, अगर ये समझना हो सीखना हो, आपको दुनिया में महर्षि गौतम सिखा सकते हैं, और उस महर्षि गौतम का जो न्याय दर्शन है उसको एक्सप्लेन करने वाले महर्षि वात्स्यायन, कभी सुना आपने नाम महर्षि वात्स्यायन, इन्होंने एक्सप्लेन किया है न्याय को। जैसे योग को एक्सप्लेन करने वाले महर्षि वेदव्यास हुए हैं, वैसे ही न्याय को एक्सप्लेन करने वाले महर्षि वात्स्यायन हुए। क्या एक्सप्लेनेशन है उनका, और डील करना, हम कई बार एक दूसरे से डील ना करने के कारण से ये सारे दोष पैदा कर लेते हैं। हमें ये नहीं आता है पति से कैसे डील करना, पत्नी से कैसे डील करना, बेटे से कैसे डील करना, बेटी से कैसे डील करना, शिष्य से कैसे डील करना, गुरु से कैसे डील करना। हम आपस में जो डीलिंग जैसा करना चाहिए हमको नहीं आता है, इसलिए हमें परेशानियां होती है। तो अगर हमें डील करना आता है तो हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर फिर भी अगर हो तो मन्यु करना चाहिए और सामने वाले की स्थिति को समझ लेना चाहिए, अग्रीमेंट करना चाहिए कि देखो इस विषय में आपकी गलतियां हैं, कोई बात नहीं, साथ रहना है ना, हमको साथ तो रहना पड़ता है ना, हम अकेले नहीं रह सकते, हम ऐसे प्राणी नहीं है कि मैं अकेले रहूं, आपको तो किसी ना किसी साथ, या तो भगवान को साथ ही बना लो तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और जिसने भगवान को साथ ही नहीं बनाया ना, उसको पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, सब चाहिए। जो बहुत परम योगी होता है ना, उसका साथी ईश्वर होता है, ठीक है ना, या तो भगवान को साथी बना लिया जिसने, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने अभी डायरेक्ट फ्रेंड नहीं बनाया भगवान को, डायरेक्ट, इनडायरेक्टली तो हम सब बनाते हैं, त्वमेव माता च पिता बोलते हैं ना हम लोग, तो उसको मित्र तो हम लोग मानते ही है, लेकिन डायरेक्ट अभी नहीं बनाया हमने, तो जो डायरेक्ट भगवान को मित्र बनाए तो उसको तो किसी भी आदमी की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम सबको जरूरत है आदमियों की, हमें चाहिए, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, ठीक है आपका ये दोष ये दोष ये दोष कोई बात नहीं, तो आप भी ऐसे बोलना, आपका भी ये दोष कोई बात नहीं, अग्रीमेंट हो जाएगा, फिर लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी, यानी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तब आता है मैं ये मानता हूं ये गलत है, ये गलत है, अरे भाई वो गलत है पर आप कौन हो, आप भी गलत हो, आप किसी और विषय में गलत, वो किसी और विषय में गलत, दोनों बराबर है, सेम है, केवल इशू का अंतर है ना, विषय का अंतर है ना, दोनों एक जैसे ही है, इसलिए गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा विवेक पैदा करके आदमी अपने गुस्से को समाप्त कर सकता है, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, ऐसे रोक नहीं सकते बिना विवेक के, यही विवेक लाना हो, ये विवेक ला करके हम अपने गुस्से को रोक सकते हैं, देयर इज नो ऑप्शन, कोई और विकल्प नहीं है। तो काम क्रोध, तीसरी बात है लोभ। लोभ समझते हैं ना आप लोग, हाँ जब बहुत भूख लग रही है, देर होती जा रही देर और हो गई, 12 के 1 बज गए, 1 के 2 बज गया, और सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं, और बहुत पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और स्पेशली डायबिटिक आदमी को तो और ज्यादा परेशानी होती है, और भोजन देर से, और जब भोजन आ जाए एकदम तो इंटरनली मेंटली आदमी टूट पड़ता है, और कभी कभी वर्बली भी बोल पड़ता है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, और फिजिकली भी वो टूट पड़ता है। इसका नाम है लोभ। ये अलग अलग विषयों में, अलग अलग इश्यूज में ऐसे लोभ होते हैं। तो लोभ राइट वे में अगर लोभ है तो अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए महर्षि स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं राइट वे में, पढ़ने में लोभ करना चाहिए। आपने कभी पढ़ करके देखना तो स्वामी दयानंद लिखते हैं पढ़ने में लोभ। अगर स्टूडेंट पढ़ने में लोभ नहीं करेगा तो स्टडी कैसे करेगा, मेरी बात समझ रहे ना, पढ़ने में अगर लोभ ना हो तो स्टडी करे, लेकिन स्टूडेंट खाने में लोभ करने लग जाए तो पढ़ नहीं पाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? और स्टूडेंट घूमने में लोभ करने लगेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। तो कहां लोभ करना कहां नहीं करना, यही तो कंट्रोल है। तो कहते हैं राइट वे में अगर लोभ है देर इज नो प्रॉब्लम, रॉन्ग वे में जहां जहां लोभ हमारे मन में पैदा हो जाए तो क्या करें? बात समझ में आ रहा है जी प्रश्न? तो कुछ नहीं करना, त्याग करना है। त्याग, त्याग समझते ना, छोड़ देना है। जैसे किसी को मीठा खाने में बहुत लोभ है, यानी मीठा को देख करके रह नहीं सकता वो, तो क्या करे? बस उसको संकल्प लेना चाहिए मेरे को मीठा नहीं खाना है, बस खाना ही नहीं। नहीं जी, फिर वो ऑप्शंस दिमाग में नहीं लाना। याद रखना, कई बार आदमी क्या करता है, विकल्प सामने लाता है ना तो वो ग्रोथ नहीं करता बेचारा, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा विकल्पों में जाता है। भाई तू मीठा नहीं खाता, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, न्यूट्रिशंस जो चाहिए बाकी बहुत सारी चीजें सब मिल जाएंगे, आपको मीठा नहीं खाना, क्योंकि मीठा में आप कंट्रोल नहीं करते। इसलिए जब जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लोभ हो रहा है, वो रॉन्ग वे में हो रहा है, तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, त्याग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मीठा नहीं, बांध, बस और कुछ नहीं, ये त्याग करना पड़ेगा। तो जहां जहां हमें रॉन्ग वे में लोभ पैदा होता है वहां वहां उसे त्याग करना है। अगर नहीं करेंगे ऐसे लोभ को हम रोक नहीं सकते। स्पष्ट हो रहा है जी? काम, क्रोध, लोभ और मोह। मोह का मतलब होता है अटैचमेंट, चाहे लिविंग थिंग के साथ हो या नॉन लिविंग थिंग के साथ में, अटैचमेंट जबरदस्त होता है आदमी का। ये अटैचमेंट बहुत मुश्किल से जाता आदमी का। अब इस अटैचमेंट को कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि आदमी पता नहीं किस किस के साथ अटैचमेंट रखता है। ये मोह बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक तो लोभ भी है, खतरनाक तो द्वेष भी है, खतरनाक तो काम भी है। हर दोष अपने आप में, एक बार कहानी सुना दूं मैं बीच में, हंसा दूं ना, थोड़ा सीरियस देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा हंसा देता हूं। मतलब बिच्छू समझते हैं? बिच्छू क्या बोलते हैं? हाँ, बिच्छुओं की पंक्ति, वो अकेले नहीं जाते, कई बार पंक्ति के पंक्ति, लाइन के लाइन जाते हैं। अब मैं हरियाणा में बोलो, तेरे में चौधरी कौन है भाई? मतलब जो बिच्छुए जा रहे हैं, बिच्छू जा रहे हैं ना सब, उसमें से किसी ने पूछा तुम्हारे में नेता कौन है, तो बिच्छू ने बोला तू उंगली लगा के देख, पता लगेगा नेता कौन है। अरे अब तो असो कुछ समझ रहे ना? यानी आप बिच्छुओं से ये पूछो तुम्हारे में नेता कौन है, लीडर कौन है, तो हाथ लगा के देखो, पता लगेगा लीडर कौन है, पता लगेगा। तो ये जो दोष है ना, ये सब ऐसे ही है, कोई किसी से कम नहीं है। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे अहंकार हो, चाहे कोई भी हो, सब सेम टू सेम है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब इक्वल है। हाँ, उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता। कोई कहता है जी बिल्कुल मेरे में गुस्सा ही नहीं आता है, बस मैं बहुत प्रेम करता हूं, मतलब वो राग करता है एक्चुअली, तो मेरे में बहुत, मैं बहुत लोगों के साथ मिले, मेरे को द्वेष नहीं, मैं गुस्सा नहीं आता। याद रखना, जिसके अंदर जितना प्रेम होता है उसके अगेंस्ट उतना ही गुस्सा होता है, और जिसके अंदर जितना द्वेष होता है, याद रखना, उसके अंदर प्रेम भी राग भी उतना ही होता है, इक्वल होता है। लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर आता है सामने, वैसे थोड़ा आएगा। अगर मैं हमेशा बात बात पर मैं आपसे गुस्सा करने लगूंगा, ए बाबा जी पागल हो गए भाई, इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर लो, यही कहोगे ना हमेशा, हर वक्त हर काम में मैं गुस्सा करूंगा, तो फिर मैं नॉर्मल नहीं हूं ना, एबनॉर्मल हो गया। तो गुस्सा तो कभी कभी आता है, तो जब सिचुएशन आता है तभी तो पता लगेगा आप क्या हो। तो राग जितना होता है द्वेष भी उतना ही होता है, कोई कम नहीं, याद रखना। ये एक्सट्रीम है तो वो भी एक्सट्रीम है, कभी कोई दबा रहता है, कोई कभी उभरा हुआ रहता है। समझना हो तो ये जो मधुमक्खियां होती है ना, मधुमक्खियों में राग देखना और अटैचमेंट, उनको देखना आप क्या अटैचमेंट रखते हो, वो रखते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, झुंड के झुंड ऐसे इतने मोटे बन करके, और सबसे नीचे वाले को देखना, सबसे ऊपर वाले को देखना, कितना राग है उनके अंदर, कितना उनके अंदर अटैच्ड है वो, सब मिलकर के रहते कितना राग है, पर उसमें द्वेष देखना होता पत्थर मार के देखना पता लग जाएगा। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? अब राग द्वेष उनमें ऐसे थोड़ा दिखाई देगा आपको, तो ऐसे ही जिसमें ज्यादा राग दिखता है उसमें द्वेष नहीं दिखता है ना, वो आपको हमको सबको पता नहीं लगता, जब छेड़ो उसको पता लगेगा कि कितना द्वेष होगा। तो सारे सेम टू सेम है। तो ये जो मोह है, ये जो राग है, ये जो अटैचमेंट है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? तो उसके साथ दो चीजें हमको छोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। एक होता है त्याग, और दूसरा ऐड करना पड़ता है अवयव। उसको अवयव में देखना, उसको इकाई के रूप में देखना नहीं, तो हमारा अटैचमेंट जो है ना धीरे धीरे कम होता जाएगा, हमारा राग कम होता जाएगा, उसके बिना कम नहीं होने वाला है। ये मोह जो है ना, ये राग जो है, ये अटैचमेंट जो है, ये तभी कम होता है जब त्याग करने लगते। देखिए, त्याग से डरना नहीं, जब समय आता है, जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाती हैं, वहां हमें त्याग करना पड़ता है। हम वहां त्याग नहीं करते इसलिए हमारा अटैचमेंट छूटता नहीं। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती, इसके लिए वेद ने आश्रम व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनी, बहुत सारी व्यवस्थाएं वेद ने बनाई है। और उस वेद के हम लोग बोलते हैं ना, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो एक सिस्टम दिया है वेद ने, सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर हम चलने लगते हैं तो हमारे में अटैचमेंट धीरे धीरे कम होता है। हम सिस्टम को ब्रेक करके चलते हैं इसलिए हमारे में अटैचमेंट कम नहीं होता, मोह कम नहीं होता। उस मोह को कम करने के लिए सिस्टम के अकॉर्डिंग, जहां जब त्याग करना है तब कर दो, टाइम रहते हैं। याद रखना, समय रहते ही समझदार होना पड़ता है। समय बीत जाने पर हर कोई समझदार होता है, समय बीत जाने पर हर कोई समझदार होता है, समय रहते ही समझदार होना। तो टाइम जब जब जिसका आता है तब तब हमें त्याग करते जाना चाहिए। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो समझ लीजिएगा मुसीबत है, छीनना पड़ता है तब उसको, तब उससे छीना जाता है तब उसको और ज्यादा दुख होता है। इसलिए टाइम रहते ही हमें त्याग करते रहना चाहिए। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो उसको अवयवों के रूप में देख लेना चाहिए, जिससे आदमी में अटैचमेंट कम होता जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जेलसी, जेलसी तो द्वेष के साथ, गुस्से के साथ ही रिलेटेड, उसी का भाई है वो, भाई कहो, बहन कहो, कुछ भी कह सकते आप। तो वो ईर्ष्या जो होती है हमारे मन के अंदर, या तो हमारे से थोड़ा सा बेटर दिखता जो कोई भी, किसी भी फील्ड में, बोलने में हो, गाने में हो, राइटिंग में हो, जिस किसी भी क्वालिटी में हो, जिस किसी भी योग्यता में हो, जिस किसी भी स्किल में आप देखेंगे, हमसे जो कोई बेटर होता है, चाहे पैसे में, मकान में, गाड़ी में, जिस किसी में, तो थोड़ा बहुत जेलसी हमारे में पैदा होती है। तो ऋषि ने कहा उसको देख करके खुश रहना सीखो, प्रसन्न कर लो अपने मन को, प्रसन्न। जैसे बेटे को देखते हम, बेटा ग्रोथ कर रहा है तो हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। बात समझ में आ रही है? जब बेटा ग्रोथ कर रहा होता है उसको देख करके हमें खुशी होती है। पति जब ग्रोथ कर रहा होता तो पत्नी को खुशी हो रही होती है। पत्नी भी ग्रोथ कर रही हो तो पति को भी खुश होना चाहिए, ठीक है ना? और ऐसे ही एक दूसरे जब ग्रोथ कर रहे होते हैं, चाहे वो इंटरनली करें या एक्सटर्नली करें, तो हमें खुशी होती है जो अपने लोग जब ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो जब दूसरे लोग ग्रोथ कर रहे तो उनको देख करके भी प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। इसलिए महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि कहते हैं ऐसे लोगों को देख के खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो, मन में प्रसन्नता पैदा करो। तो जेलसी हमारी, ईर्ष्या जो है, धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ईगो, अहंकार जिसको आप कहते हैं, अहंकार, अहंकार इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें अहंकार किस पर है, पैसे में हो सकता है, बल में हो सकता है, रूप में हो सकता है, कपड़ों में हो सकता है, जूते चप्पल सैंडल में भी होता है आजकल लोगों को, और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते उसमें भी होता है, चाहे मोबाइल हो चाहे जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या गाड़ियां हैं, मकान है, पैसा, किसी ना किसी को लेकर के आदमी में अहंकार होता है। क्योंकि उन अहंकार इसलिए कहते हैं, अपना मानते हैं उसको, अपनी चीज मानते हैं। जो व्यक्ति अपनी चीज मानता उसी को अहंकार उत्पन्न होता है। इसलिए ऋषियों ने अच्छा व्यवस्था दी है कि ईश्वर को समर्पित करो, वो जो कुछ भी आपके पास क्वालिटी है या आपके अंदर वो स्किल है या आपके पास वो ऐश्वर्य है, चाहे वो इंटरनली हो एक्सटर्नल हो, सबको भगवान को सौंप दो, समर्पण कर दो, जिसको आप कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण, केवल वर्बली नहीं बोलने का, इंटरनली मानने का, मेरा नहीं भगवान का। आप ये समझना ये सब किराए पे लिया, आप रेंट करते हो ना, कहीं जाते हो तो गाड़ी रेंट करते हो, कभी कभी आप लोगों के काम करना चाहिए, आप बड़े बड़े बंगलों या अच्छे अच्छे मकानों में रहते हो ना, एक साल के लिए ये मान करके चलना है कि किसी के यहां आप रेंट पे रह लेना का, किराएदार बन करके रहने का, आपको बहुत पता लगेगा अपना। जब दूसरे के घर में रहते हैं तो जो अपना नहीं होता है ना, कितना आप फ्री स्टाइल से, मतलब जिसको है ना बिल्कुल अच्छे ढंग से आप एंजॉय करोगे, क्योंकि आपका अपना ही नहीं है, मेरा ही नहीं है, तो पूरा यूज करोगे। तो भगवान का मान लेना, जो कुछ भी आपके पास ही रहेगा, कोई भगवान नहीं ले जाएगा, याद रखना रहेगा आपके पास, पर मानना मालिक भगवान को, इंटरनली मानना, आत्मा से मानना है, तो ये सब भगवान का, मेरा क्या है यहां, मेरा तो कुछ है नहीं, तो किस पर मैं अहंकार करूं, किस पर करूं। तो इस तरह जब ईश्वर प्रणिधान करोगे, ईश्वर समर्पण करोगे, तो ये जो ईगो है वो धीरे 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 कम हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को लेकर कुछ बातें कही है। इस पर आप हम सबको मिलकर के ऐसा सोच करके, हमारे में जो भी ये दुख आते हैं इनके कारण से, इनको दूर कर लेना चाहिए, और हम जो अधिक से अधिक सुखी रहना चाहते हैं अपने डे टू लाइफ के अंदर, इन चीजों का यूज करके अपने आप को अधिक से अधिक सुखी करना चाहिए। आपका समय पूरा हो गया, मैं इसको यहीं पर विराम देते हुए एक बार आप सबको हृदय से आभार धन्यवाद करता हूं। पिछले कई दिनों से हमारा सुबह का योगा का सेशन और इवनिंग का चार दिन का, फिर बीच बीच में संडे को जो भी आप लोग आकर के सुनने का प्रयत्न किया, अपना टाइम निकाल करके समय दिया है, इसके लिए आप सबको मैं हृदय से आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस समाज को, समाज के अधिकारी महानुभावों को भी मैं हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और जो इस सबको अरेंज करने में कई लोगों का सहयोग रहा है, विशेषकर अपने शेखर जी हैं, जसबीर जी हैं, रघुवीर जी हैं, इनको भी मैं विशेष रूप से, इनके शेखर जी के परिवार के भी लोग, कई लोग जुड़े हुए हैं, जय जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम सबका मेरे को नाम पता नहीं है, अपने श्री जी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके सहयोग से, अपने गुलाटी जी है, इन सबके सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चला है, आप सबका सहयोग रहा है। मैं आप सबको भी सबका नाम याद एकदम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सबको एक साथ हृदय से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और इन सबके साथ में इस बार, क्योंकि पिछली बार में ऐसा अवसर नहीं मिला, हमारे आचार्य जी हैं यहां के समाज के, धर्माचार्य जी, इनका भी बहुत सहयोग मिला है, चाहे वो रिकॉर्डिंग करने में हो, मेरे लिए भी एक स्पेशल उन्होंने टाइम निकाला है, और इस बार साथ कहीं जाने आने का भी अवसर मिला है, और उनके सरल स्वभाव के कारण से, उनकी आत्मीयता के कारण से बहुत अच्छा बीता है यहां पर रहते हुए। मैं विशेष रूप से उनको भी हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। एक बार आप सबको आभार धन्यवाद प्रकट करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।
जी आचार्य सूर्यनंदा जी।